ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद ही बन जाएगा। और इन प्यारी सी पंक्तियों के साथ मैं आज अपने सारे लिसनर्स का स्वागत करती हूँ गौधूली आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रोज़ प्रतिदिन किसी न किसी गोंडा शहर की एक अच्छी और एक जानी मानी और बुलंदियों को हासिल करने वाली पर्सनालिटी से मिलते हैं। और आज फिर हमारे साथ एक बहुत ही जानी मानी पर्सनालिटी जिन्होंने अपने करियर में बहुत ही कुछ खास किया और बहुत सारी बुलंदियों को छुआ। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं सर आपका हमारे स्टूडियो में। और मैं सर सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूँगी कि सर कैसे आपने इस फील्ड को चुना और कैसे आपके बचपन से पढ़ाई रही, परिवार में आपके माता पिता क्या करते थे, इन सब बारे में कुछ हमारे लिसनर्स को बताइए सर।
धन्यवाद। बचपन से ही मुझे इंजीनियर बनने का शौक था और हमारी सारी सोच साइंटिफिक थी बाय बर्थ। ये हमारा बहुत बड़ा एम्बिशन था इंजीनियर बनना। मैं गोंडा में ही पैदा हुआ था
जी।
बहुत पहले की बात है, तब इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में दो ही तीन थे, आईआईटी कानपुर, कोरापुर में मदन मोहल
जी।
तो इस तरीके से एडमिशन की बड़ी दिक्कत थी। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत थी आर्थिक कठिनाइयाँ, कोई व्यवस्था नहीं रहती थी, लोगों को पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती थी। बाद में हमने फैसला किया था कि सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स करेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा से
जी।
यहाँ से हमने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स से हमने ग्रेजुएशन किया
जी सर।
फिर ग्रामीण अभियंत्र विभाग में सेवा में आ गए, निरंतर यहाँ काम करते रहे, लगन से, मेहनत से। 39 साल लगातार सेवा करने के उपरांत मैं यहाँ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
और सर मेरा प्रश्न ये भी है कि सर आपके माता और पिताजी का इसमें क्या योगदान रहा और वो खुद क्या करते थे, उनसे क्या इंस्पिरेशन मिली आपको?
हमारे पिताजी सरकारी सेवा में ही थे
जी जी।
हमारी माता गृहिणी थी
जी।
दो भाई दो बहन थे
जी।
हम लोग यहीं गोंडा में रह के ही टॉमसन इंटर कॉलेज से इंटर किया था, बाकी सारी पढ़ाई गोंडा हुई। इसके बाद सर्विस में आने के बाद गोंडा मैंने छोड़ा
जी जी। और सर क्या कभी दिमाग में ऐसा सोच हुआ कि मैं इंजीनियर ना बन के ये भी बन सकता हूँ, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन भी कभी रहा आपके पास?
एक केवल हमें जो है
जी
फिजिक्स के अलावा और किसी चीज़ में कोई रुचि नहीं थी, और इंजीनियर के अलावा हमने कुछ सोचा भी नहीं था।
मतलब एक डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट आपका रहा।
मैं, हमारे छोटे भाई का भी
जी जी,
वो इस समय डिप्टी जनरल मैनेजर है गेल इंडिया लिमिटेड में
जी जी।
दोनों का एक ही लाइन क्लियर था बचपन से ही,
मतलब उसी डायरेक्शन में आप लोग मोटिवेटेड थे। और सर ये तो आपके मतलब मोटिवेशन की बात हुई कि आप बिल्कुल डेडिकेटेड थे, बिल्कुल मतलब कह सकते हैं ना कि उसी में रुझान था आपका।
बिल्कुल रुझान था, प्राइमरी लेवल से ही रुझान था।
ये बहुत बड़ी बात है। और अक्सर हमारे जो यूथ की अगर मैं बात करूँ, हमारी यूथ हमेशा माइग्रेट करता रहता है, ये स्विच करते हैं, ये नहीं कर सकते तो ये, मतलब स्टार्टिंग से मतलब ये कहना चाहते हैं आप कि एक डायरेक्शन पकड़ के हमें उस पर चलना चाहिए।
नहीं, वो तो ठीक रहता है, उसमें अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना रहती है, लेकिन वो मन से नहीं। जैसे हमने ये सर्विस की या जो भी पढ़ाई की, ये हमारे मन से था, ये हमारा शौक था। शौक से कोई चीज़ करता है और उसमें उसको रोजगार भी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है।
सो वी कैन से दैट इज इट इज़ योर पैशन।
हमारा ये पैशन था,
ये बहुत बड़ी बात है। और सर मैं भी ये भी जानना चाहूँगी कि इसके अलावा क्या आपको कभी राइटिंग या पोइट्री पढ़ना या
नहीं,
क्रिकेट
लिटरेचर से हमें बहुत लगाव था, स्पोर्ट्स में हमारा कोई लगाव नहीं था। लिटरेचर्स में हम इंटर लेवल में टॉमसन की पहले लाइब्रेरी बड़ी रिच थी जिसमें हमने काफ़ी नावल्स पढ़े
जी जी। और कभी ऐसा हुआ कि घर में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसको देख के आपके अंदर और मोटिवेशन आ गई, या कभी कोई रोल मॉडल जैसा कुछ आपके लाइफ में आया जिसको देख के मतलब एकदम स्विच हो गया कि अब तो ये चीज़ करनी ही है, किसी से मोटिवेशन या कोई आपके सामने आइडल पर्सनालिटी कभी ऐसा हुआ?
आइडल पर्सनालिटी तो हमारे सामने कोई भी नहीं हुआ। उसका कारण था हम बहुत ईगोइस्ट थे, हम खुद ही को अपना आइडियल मानते थे।
मोस्ट एम्बिशियस, दैट्स अ ग्रेट थिंग। और कभी लाइफ में ऐसा हुआ हो कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हों कि लगता रहा हो कि हाँ अब ये चीज़ भी हो सकती है, बट फिर आप वापस उसी डायरेक्शन में मूव करने लगे, कि पढ़ाई के अलावा स्कूल में किसी अलग करिकुलर एक्टिविटी में आपका रुझान, स्कूल में कभी कोई टीचर ने आपको मोटिवेट किया हो कि यस यू कैन डू इट, आप ऐसा कर सकते हैं आप?
जी हाँ, इसके लिए हमारे कई टीचर्स जिनको हम आज भी आभार व्यक्त करना चाह रहे हैं, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया।
जी जी, मतलब मोटिवेशन में, जैसे
मोटिवेशन में हम कभी कभी कमज़ोर पड़े या अपने को हारते हुए देखा तो उन्होंने हमारे पूरा सहयोग किया,
मतलब हौसला अफजाई का काम,
हौसला अफजाई का काम पूरे पूरा करते रहे।
और कभी सर स्कूल में आपने किसी मतलब स्टेट या नेशनल लेवल के किसी गेम या किसी भी हमें पार्टिसिपेशन किया?
नहीं, पहले भी बताया कि हमें गेम में नहीं इंटरेस्ट था। हाँ, विज्ञान प्रदर्शनी में हमारे मॉडल्स स्टेट लेवल पे कई बार गए हैं,
मतलब मॉडल्स आपने?
हाँ, मॉडल्स में, एग्जीबिशन में। विज्ञान प्रदर्शनी पहले लगा करती थी, और ये बात 75 और 76 की थी जब कंप्यूटर और लॉजिक गेट के बारे में बात लोग नहीं जानते थे।
हाँ,
तब हमने एक ऑपरेटर्स बनाया था जिसमें किसी भी सन का कैलेंडर या कंप्यूटिंग कर सकता था।
ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम के लिए।
जी हाँ।
और सर ये बताइए, जैसे फिजिक्स की आपने बात की, आपको फिजिक्स बहुत पसंद थी, फिजिक्स का कोई ऐसा पोर्शन जिससे आपको एकदम प्यार था कि हाँ ये पोर्शन देखते ही मतलब खाना छोड़ के भी आप उस पोर्शन की तरफ?
एस्ट्रोनॉमी।
एस्ट्रोनॉमी, यस, वेरी ग्रेट थिंग। और सर फिजिक्स में एटॉमिक फिजिक्स के बारे में क्या आपकी राय है?
अब एटॉमिक और क्वांटम फिजिक्स हमें सब कुछ अच्छे लगते हैं
जी,
और जब हम इसको कोरिलेट करते हैं कॉस्मोलॉजी से तो
वो तो एक अलग ही डायरेक्शन में जाता है। सो थैंक यू सर, ये आपने अपने बारे में बताया, और आप अपने बच्चों के बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या आपसे भी इंस्पायर होकर आपके बच्चों ने इस डायरेक्शन को मूव करने के बारे में सोचा या कुछ अलग डायरेक्शन?
जी हाँ, हमारे बच्चों ने जो हमारे पढ़ाई में प्रॉब्लम आई थी, जैसे हमने कहा कि उस समय में इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी नहीं लगभग पूरे इंडिया की थी, इकोनॉमिक बहुत कमज़ोर थी, तो जो पढ़ने के कॉलेजेस वगैरह नहीं थे, तो उन लोगों ने भी इंजीनियर बनने का फैसला किया। और दो बेटियां हैं हमारी, दोनों जो है मैकेनिकल इंजीनियर हैं। बड़ी बेटी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है
जी जी।
और छोटी बेटी जो है हमारी थॉपर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है इस समय।
वाओ, दैट्स ग्रेट थिंग, मतलब इंस्पिरेशन आप उनके लिए बन गए।
और इंजीनियरिंग में वो पीएचडी करने जा रही है।
ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब आपसे इंस्पायर उन्होंने आपको मतलब रोल मॉडल बनाया। और सर संघर्षों की आपने बात की कि इकोनॉमिकली आपने मतलब बचपन से फेस किया, तो क्या कुछ संघर्ष आपके लाइफ में रहे?
नहीं,
मतलब
बहुत संघर्ष नहीं था उस समय, वो संघर्ष सबका था। संघर्ष ये था कि उस समय फीस इंजीनियरिंग कॉलेज की बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बहुत दूर दूर कॉलेज थे, हर आदमी कॉमन मैन जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था।
हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है।
और चाहते हुए भी वो चीज़ को नहीं कर पाता था
जी जी,
उसको कहीं ना कहीं समझौते करने पड़ते थे कि हमें इस कॉलेज में ही जाना, यहाँ पे जाना है, जो उसके रेंज में आ जाता हो।
तो सर संघर्ष से जुड़ी कोई छोटी सी मेमोरी हो तो आप बताइए कि हाँ मेरे लाइफ में ये बहुत बड़ा संघर्ष था। कभी कभी होता है ना कि कहीं हम जा रहे हों रास्ते में, कभी किराया कम पड़ जाता है, या कभी कुछ ऐसा छोटा सा मतलब मोमेंट शेयर कीजिए जिससे हमारे यूथ को मोटिवेशन हो कि मनी इज़ नॉट एवरी थिंग दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर।
देखिए, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए, हमने डिप्लोमा किया, लेकिन हम अपने जो हमारा टारगेट था उसको हमने अचीव कर लिया।
जी जी,
मेहनत करके अचीव कर लिया।
तो मतलब मेहनत इज, मतलब आप कहना चाहेंगे अगर कड़ी मेहनत आप कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ बाधा नहीं बन सकती, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था आपकी लाइफ में वो मतलब बाधा नहीं बन सकती अगर आपकी सोच।
देखिए, सफलता के लिए तीन चीजें होनी चाहिए।
जी जी,
परिश्रम, परिवेश और प्रारब्ध।
जी सर,
हमें परिश्रम भी करना चाहिए, हमारी प्रारब्ध यानी किस्मत भी काम, और परिवेश हम कहाँ रहते हैं, कैसे करते हैं, क्या एनवायरनमेंट है हमारा।
जी जी,
इकोनॉमिकल या सोशल, ये सारी चीज़ें करती हैं, तो परिश्रम ही हमारे हाथ में है।
जी जी,
प्रारब्ध तो हम बनाते नहीं हैं।
बिल्कुल,
और परिवेश भी प्रारब्ध से ही मिलता है।
बिल्कुल, तो परिवेश और परिश्रम दोनों अगर एक साथ मिल जाए तो मतलब ऊंचाइयों को हम छू सकते हैं। और सर आपने बताया कि आपकी हॉबी में आपको लिटरेचर बहुत पसंद है।
हाँ, लिटरेचर।
तो लिटरेचर के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि आपने राइटर को या किस पोएट को या किसी को ऐसा मतलब जिससे आप पढ़ते थे आपको पढ़ के मजा आता?
जिसे हमें शरदचंद बहुत अच्छे लगते थे
जी।
हमें बंगला साहित्य में काफ़ी रुचि थी, जो बंगाली जो थे बांग्ला लेखक बंकिमचंद्र चटर्जी हुए, शरदचंद हुए, ये हमें काफ़ी अच्छे लगते थे। प्रेमचंद तो सभी को पसंद होंगे,
कोई भी ऐसा नहीं,
कोई भी ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा गहरे लिटरेचर में थे नहीं, इसलिए जयशंकर प्रसाद वगैरह को हमारे नहीं पढ़ पाते, समझ में आता था। पोएट्री तो हमारी समझ में ही नहीं आती, वो आज भी नहीं आई।
हाँ, लिटरेचर में आपको रुचि रही है। और कोई ऐसी मतलब उनकी रचना जो आपको आज भी याद है और लगता है कि हाँ वो मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगी, ये आपको
पसंद की?
अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। और सच में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सर कि जो छाप छोड़ जाती है हमारी ज़िंदगी में, तो उस छाप छोड़ने की अगर मैं बात करूँ तो आपकी पढ़ाई के पूरे मतलब जो आपने डिप्लोमा किया उस टाइम पर कोई ऐसा टीचर या कोई ऐसी इंसिडेंट जो छाप छोड़ गई आपकी ज़िंदगी में, वो आपको बार बार याद आता है?
हाँ, ये छुट्टी हमारे थे सिविल इंजीनियरिंग के
जी जी
एसआर सतीजा साहब
जी, तो उनकी आपको याद आती है अभी? हाँ, भी अगर मौका मिले तो आप उनसे मिलना
चाहेंगे।
सो थैंक यू सर इतनी सारी बातें बताने के लिए। और अभी हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
नहीं सुनेंगे अब बांझपन का ताना, अब तो बस गिफ्ट IVF है जाना। जी हाँ, निसंतान दंपतियों के घर भी अब गूंजेगी खिलकारी। गोंडा में मंडल का एकमात्र विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित IVF सेंटर, जो देता है आपके आंगन में खुशियों की सौगात। निशुल्क परामर्श के लिए आज ही संपर्क करें 1800 120 60 60 60। गिफ्ट IVF, गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा।
ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
जब भी पहनिए कुछ खास पहनिए, आ गया है आपके अपने गोंडा शहर में साड़ी संसार, जो लेकर आता है आपके लिए सभी प्रकार के वैवाहिक एवं फैंसी साड़ियों का लेटेस्ट कलेक्शन, जिनमें शामिल है सलवार सूट, लहंगा चुनरी, लेगिंग जैगिंग, ब्लाउज, पैंट, कुर्ती, शरारा गरारा, सभी उचित मूल्यों में उपलब्ध हैं। पता है गांधी पार्क के सामने, हनुमानगढ़ी रोड निकट LPS चौराहा, मालवीय नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 99 36 19 3000, 9936193।
ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन। ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
सो लिसनर्स, हमारे साथ आप सबको पता है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री प्रवीण जी जुड़े हैं, जिन्होंने बहुत सारी बातें अपने लाइफ से जुड़ी, मतलब अपने बायो से जुड़ी हुई बताई। लाइफ में बचपन से इन्होंने कैसे मोटिवेट रहने का तरीका बताया और कैसे कठिन परिश्रम के साथ परिवेश भी काम करता है, ये सब हमने जानी। और अब हम जानेंगे सर के करियर के बारे में कि सर ने जब अपना वर्किंग करियर यानी कि डिप्लोमा के बाद जब अपना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो काम शुरू किया, मतलब रूरल एरिया में ये गए और इन्होंने क्या क्या काम किया, उसके बारे में सर बताइए सर हमारे लिसनर्स को।
हम लोग जब शुरू में काम करना शुरू किया, हमारा विभाग बिल्कुल नया था, अभी इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं।
जी जी।
तो 10-11 वर्ष का ये विभाग था और जैसे कि इंडिया की ही इकनॉमी बड़ी कमज़ोर थी, फंड्स की बड़ी कमी रहा करती थी, गांव में कोई विकास नहीं था, कच्ची सड़कें हुआ करती थी, कहीं भी हमें आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी।
जी।
उस समय बात कही जाती थी कि केवल मोटरसाइकिल या साइकिल से ही गांव जाया जा सकता है, कार तो कल्पना भी नहीं थी कि वहाँ जा सकती है। तब हम लोगों ने मिट्टी पटाई का काम शुरू किया। फंड कम रहते थे, ज़्यादा जगह पर हमें काम कराना रहता था, तो इतने बजट नहीं रहते थे कि उस पर हम कुछ और आगे कर पाए। मिट्टी बना कर रोडें बनाएंगे। कुछ सालों तक हम मिट्टी का ही काम करते रहे, मिट्टी पटाई का काम करते रहे। फिर थोड़ा थोड़ा फंड जब उपलब्ध होने लगा तो उस पर सोलिंग ईंटों की लगाना शुरू हुआ। 10-15 साल में जब ये सेचुरेशन की स्थिति पैदा हो गई, तब हमने उस पर पक्की सड़कें बनाने का काम शुरू किया। इस मामले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में शुरू हुई थी, ये कॉन्सेप्ट उनका था कि हर गांव को हमें एक अच्छी सड़क देनी है।
जी।
इस कॉन्सेप्ट में PWD और RED दोनों मिलकर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे हम लोगों ने इस पे काफ़ी अच्छा काम करना शुरू कर दिया और गांव में अच्छी सड़कें बनने लगी।
जो प्रमाण दिख रहा है सर,
जो आज भी दिख रहा है, आप कहीं भी गांव में जाइएगा PMJSY का लोगो मिल जाएगा और रोड मिल जाएगी।
जी सर।
हर जगह पर ऐसा ही नहीं केवल नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पर भी काम हुआ, गाँव के अंदर सड़कें बनना शुरू हुई। इसके लिए एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया गया कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सड़कें होंगी पहले वो ली जाएंगी।
धीरे धीरे प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट होती थी?
ये केंद्र सरकार की योजना थी, स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन करती है
और उस प्लान को आप लोग फॉलो करते हुए से मतलब उसे अंत तक पहुंचा देते हैं। और हमारे लिए तो वो एक छोटा सा मुझे लगता है चेंज होगा कि आज कच्ची रोड से फिर सोलिंग बनी, सोलिंग से फिर पक्की रोड, लेकिन इसके पीछे जो संघर्ष रहा होगा वो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा।
नहीं, बहुत संघर्ष रहा है। धीरे धीरे हम लोगों ने काम सीखना शुरू किया, नई नई टेक्नोलॉजी आती गई
जी,
पुरानी पढ़ाई थी उस पर बहुत सी टेक्नोलॉजी, जिसे अभी भी लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम चला ही करते हैं। डॉक्टर और इंजीनियर को हमेशा अपडेट करना पड़ता है,
बिल्कुल रोज कोई ना कोई चेंज हो ही रहा है दिन प्रतिदिन।
अब आज से 40 साल पहले जो कुछ पढ़ाया लिखा गया था वो टेक्नोलॉजी कहीं भी नहीं यूज हो रही, ना बिल्डिंग में ना रोड में, सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। तो एक तो हम लोग टेक्नोलॉजी लेवल पे अपने को काफ़ी इम्प्रूव किए, इसके बाद बजट की उपलब्धता भी बहुत कुछ हो गई और संपर्क मार्गों का निर्माण आज आप देख ही रही होंगी, चाहे नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, हर गांव इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग हर गांव सेचुरेट हो चुका है। अब हम अपग्रेडेशन का ही काम कर रहे हैं, यानी जो सड़कें पतली थी उनको चौड़ी कर रहे हैं। हमारे पास नई सड़कें बनाने के लिए नहीं रह गई हैं जो दो विलेज को जोड़ रही हों, बड़ी सड़कें हों, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है।
बिल्कुल सर, ये उपलब्धि है।
और PMJSY योजना में ऐसा भी नहीं कि सड़क बना के हम छोड़ देते हैं, 5 साल मेंटेनेंस कराते हैं उसका।
और सर सड़कों की अगर आपने बात कही तो ये सड़कें बनाने का काम, जैसे आपने सबसे पहले बोला कि मिट्टी पटाई का काम हुआ, तो सपोज काम दो गांव एक साथ हैं तो उनमें अगर सोलिंग बन रही है या मिट्टी पटाई वाली रोड जो बन रही है उसमें लगभग कितना समय लगता रहा होगा उस समय?
पहले बहुत समय लग जाता था, 1 किलोमीटर सड़क बनने में मिट्टी पाटने में ही 1 महीने लग जाता था।
और संसाधन क्या हुआ करते थे उस समय?
केवल मैनुअल होता था,
मतलब मैन पावर से काम करते थे।
आज सारी चीजें मशीन से होती हैं,
मशीन ही है। हाँ, लेवलिंग के लिए अपने पास रोलर्स हैं और
नहीं, FDR टेक्निक में तो हम लोग रोड बनाते हैं, एक दिन में 200 मीटर सड़क हमारी बन जाती है।
जी जी,
अभी हम बहराइच में थे, हम एक ट्रायल कराया गया था, 200 मीटर की सड़क जो है 8 या 10 घंटे में कंप्लीट हो गई थी
जी,
जीरो लेवल से।
वाओ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, सुनने में भी मतलब लग रहा है कि हाँ कितनी बड़ी।
पहले सड़क कुछ भी नहीं थी और शाम को उस पर 200 मीटर सड़क बन गई,
200 मीटर। वाओ। और सर ये बताइए सबसे पहले आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई?
सबसे पहले पोस्टिंग गोंडा हुई थी हमारी।
गोंडा, और गोंडा के आसपास के क्षेत्रों में गांव के एरिया आपने कवर किए?
काफ़ी कवर किए।
और गोंडा से क्या कुछ आपको नया सीखने को मिला आपने, मतलब पहले कार्यकाल, मतलब सबसे पहला जो गोंडा है, गोंडा में आपने क्या नया सीखा, मतलब जैसे ज्वाइनिंग के दौरान?
उस समय तो बहुत इनिशियल स्टेज थी और सीखने के लिए कुछ खास नहीं था हमारे विभाग में, कोई विशेष काम था ही नहीं।
और इसके बाद आपकी कहाँ हुई?
इसके बाद हम बहराइच गए।
बहराइच आप कितने साल तक लगभग आपका कार्यकाल वहाँ कितना रहा?
6 साल पहले राउंड में थे और बाद में फिर अर्थशास्त्री अभियंता होकर 2 साल फिर वहाँ रहे
जी। और वहाँ पे भी मतलब रोड का ही काम?
हाँ, मोस्टली हमारा विभाग रोड का ही काम करता है, बिल्डिंग भी बनाता है। इस समय जो है पुलिस विभाग की बिल्डिंग बनाई जा रही है और ITI बिल्डिंग्स बन रही है।
चलिए सर, बहुत अच्छी जानकारी दी। और इसके बाद आखिरी पोस्टिंग आपकी कहाँ है?
बहराइच से रिटायर हुआ,
मतलब रिटायर उस दौरान बहराइच से बहराइच के बीच में कुछ जगह का स्थानांतरण हुआ?
बहराइच, बलरामपुर में रहा, श्रावस्ती जनपद रहा, पडरौना में मेरी पोस्टिंग रही है
जी जी,
हरदोई में भी रहा, बाराबंकी, लखीमपुर।
अरे मतलब सर आपने बहुत जगह रूटिंग की। तो सर इन सारे क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा अच्छा क्षेत्र, मतलब अच्छा मतलब वहाँ के लोग, जो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्टिव स्टाफ कहाँ मिला?
सपोर्टिव स्टाफ तो हमें हर जगह मिला
जी।
लेकिन कहा जाए अच्छा लगने का तो लखीमपुर हमें बहुत अच्छा लगता था। एक तो हम वहाँ पे नेचर से भरपूर इलाका था, कहीं भी जाने पे जंगल, नदी, कोई पॉल्यूशन नहीं था, वहाँ पे काम करने का एक अलग ही मज़ा था
जी।
तो आसपास की सिनेरियो आज भी हम कभी घूमने चले जाते हैं लखीमपुर,
ये बहुत अच्छी बात है। और सर ऐसा लग रहा है सुन के कि आप पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो पर्यावरण को बचाने के लिए भी सर आपने कुछ है?
हाँ नहीं, हमने बहुत काम किया है अपने जितने भी PMJSY रोड, हालांकि अब तो गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई कि वहाँ पे पेड़ लगाए जाएं
जी।
इसके बाद भी हम काफ़ी पेड़ लेके जहाँ नहीं लग सकता वहाँ भी लगवाने का प्रयास किया है।
सर ये बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट, और मैं लिसनर से भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप सुन रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि ये काम पहले से चल रहा है। सर ने कब काम किया होगा? सर अब रिटायर्ड हो चुके हैं, सर अब बता रहे हैं कि उस समय मतलब बिना सरकार के आदेश के सर पेड़ पौधे लगाने का काम करते थे, तो आज तो सर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पेड़ों की
बहुत ज़रूरत है।
और कहीं ना कहीं अल्प वर्षा का कारण भी पेड़ों का कटना और कम होना है। लोग घर में मतलब सोलिंग मतलब ऐसे लगवा देते हैं कि कहीं से भी मिट्टी ना आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है घर में मिट्टी होनी चाहिए। कम से कम बारिश का कुछ पानी तो ज़मीन के अंदर जाए। जो लोग कह रहे हैं ग्राउंड लेवल का पानी नीचे जा रहा है, तो जब बारिश का पानी सर ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा तो पानी कैसे मेंटेन होगा?
प्लांटेशन का काम गवर्नमेंट लेवल पर भी शुरू हुआ, हमने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया कि वो ऐसे पेड़ लगाएं जिसकी यूटिलिटी हमें डायरेक्टली कुछ ना दिखती हो। जैसे बरगद है, जामुन है, इसको कोई लगाता नहीं है, ये सार्वजनिक रूप से ही लग सकते हैं
और सालों तक
रहते हैं,
फायदे देते हैं।
आज कोई इमली का पेड़ लगाता है, कोई भी नहीं लगाता है। पाकड़ का पेड़ कोई नहीं लगाता है, जबकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो गाँव के अंदर खाली ज़मीन है जहाँ पे हमें सरकार की तरफ से वृक्षारोपण कराना है, तो वहाँ पे हम दूसरे पेड़ क्यों लगाएं, यही लगा दें।
बिल्कुल,
इसमें दो फायदा होगा, इसकी लकड़ी नहीं चोरी होगी, इसके फल के लिए इसको कोई तोड़ेगा भी नहीं।
जी सर, ये भी बात। और सर पीपल का भी पेड़ कभी कोई नहीं लगाता, जबकि पीपल तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि ये रात के समय भी ऑक्सीजन देता है।
हम तो वहाँ पे कई लोगों को हमने समझाया, प्रधान के साथ मीटिंग की, महिलाओं को भी समझाए कि आप बरगद पीपल नहीं रखोगे, अगर कुछ दिन बाद ये 100 साल बाद ये पेड़ ख़त्म हो जाएंगे तो आप बरसाई कहाँ पूजने जाओगे,
ये
आपका घंट कहाँ बनेगा।
जी,
आपको अपने गांव के लिए तो एक पेड़ चाहिए ही,
और एक आध अगर और लगा दिए जाएं तो इसमें क्या ही बुराई है।
क्या बुराई है
सर, बहुत अच्छी जानकारी थी सर। पेड़ पौधों को लेके तो मोटिवेशनल जो बात होनी चाहिए वो तो मुझे लगता है हर प्रोग्राम में जानी चाहिए, तो सर ये बताने के लिए सबसे पहले मैं आपसे शुक्रिया बोलना चाहूँगी। और सर कुछ एक्सपीरियंस इन जगहों में जाने के दौरान कुछ ऐसा लगा कि ये वाला जो एक्सपीरियंस है, ये एक छोटी सी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें कार्यकाल के दौरान, जैसे आपने गोंडा से बहराइच तक का सफ़र तय किया और उस दौरान की कोई भी छोटी सी मेमोरी शेयर कीजिए सर, जहाँ का खाना आपको बहुत अच्छा लगा हो या लोग बहुत अच्छे लगे हो, गीत कुछ भी लोग से संबंधित बता सकते हैं सर।
हम एक बार की घटना है, हम बलरामपुर में उस समय पोस्टेड थे
जी।
शाम के समय एक साइट पे हमें जाना था, साइट पे हम लोग गए एक नाला पार करके, तो जिसे पहाड़ पे होता है ज़रा सा पानी भरा जाता है तो नाले उफन जाते हैं
जी।
रात में शाम होते होते नाला उफनने लगा और वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया
जी।
हम लोग अनजान रास्ते पे चलते रहे और रात भर सड़कों को घूमते रहे, उस समय GPS नहीं था
जी जी।
भटकते हुए सुबह 5 बजे बलरामपुर पहुंचे थे,
मतलब
वो घटना आज भी याद आ रही है,
रास्ता भटक गया।
रात में कोई बताने वाला भी नहीं था।
हाँ, वो इलाका
और बलरामपुर का तराई इलाका, वहाँ पे आबादी भी बहुत कम है, बहुत रेयर पॉपुलेशन है उसकी
जी। तो उस समय मतलब आपको बहुत घूमना पड़ा और
घूमना पड़ा, कोई बताने वाला भी नहीं था।
हाँ, और डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए आपको सुबह हो गई। तो ऐसी छोटी छोटी मेमोरीज जो हैं हमें याद दिलाती हैं अपने कार्यकाल को, लगता है कि हाँ एक बार फिर ही लिया जाए। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि इन सब जगहों में अब जो विकास हो रहा है और तब के विकास में क्या तीव्रता? अब पहले का विकास तो स्लो था क्योंकि तकनीक कम थी, और आज का विकास फास्ट है, लेकिन उसमें भी कुछ अंतर अगर आपको दिखता है तो बताइए।
नहीं, आज तो विकास पूरे अपने फ्लो में है, जैसा होना चाहिए वैसा है। उसके लिए हमारे पास पूरी व्यवस्था है, लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज भी है, फंड्स भी हैं और आइडियाज़ भी हैं, प्लानिंग भी है, सब कुछ है।
और सर
समय बहुत अच्छा काम हो रहा है।
हाँ, और सर आप गांव के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या वो लोग सहयोग कर सकते हैं इस काम में, या अगर काम हो रहा है तो उस दौरान क्या, उनकी क्या भूमिका है?
देखिए, इस बारे में हमें गांव वालों से थोड़ी सी शिकायत है
जी जी।
वहाँ जब भी काम होता है कोई ना कोई गांव का एक आदमी हिंड्रेंस पैदा करता है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका नुकसान हो रहा है, दूसरे का फायदा हो रहा है इसलिए वो हिंड्रेंस पैदा करता है। हमें इस भावना से बाहर आना चाहिए। दूसरी बात है कि भारत में लोकतंत्र अब कहा जाए ओवरडोज हो चुका है। गांव में हर लेवल पे लोकतंत्र प्रधान है, एक जीता हुआ प्रधान है, एक हारा हुआ प्रधान है।
जी जी।
तो जो हारा हुआ प्रधान है वो जीते हुए प्रधान की हमेशा टांग खींचने की कोशिश करता है।
ये
तमाम टाइप की कंप्लेंट्स होते हैं उसके द्वारा काम कराए जाने पे कोई ना कोई डिस्टर्बेंस पैदा किया जाता है। अगली बार वो भूतपूर्व हो जाता है, वो वर्तमान हो जाता है, तो वही काम वो करने लगता है।
तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों से कि क्या सही है क्या गलत है उसको चुनने के लिए?
मैसेज ये है कि जिनकी आपसी मनमुटाव है, लड़ाई है, वो व्यक्तिगत तौर पर लड़े, सरकारी मशीनरी को वो अपना हथियार न बनाए।
बिल्कुल। और हो सके जितना सहयोग करने का
कर सके, क्योंकि वो किसी एक आदमी का विरोध नहीं करते हैं। किसी रोड का या किसी नाली का किसी ने विरोध किया तो उस आदमी का विरोध नहीं कर रहा है, वो पूरे कम्युनिटी का विरोध कर रहा है।
कहीं ना कहीं वो देश के विकास में
देश
भी एक बात है, बहुत बड़ी बात है।
हम लोगों के सामने ये बहुत बड़ी समस्या आती है।
तो सभी लिसनर्स अगर सुन रहे हैं तो आप लोग ये हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप गांव से हैं तो अगर आपके गांव में कोई भी सड़क द्वारा या कोई भी ऐसी योजना
कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, कुछ भी हो
तो
रहा,
आप भर भर के उसमें सहयोग करें, क्योंकि वो आपके फायदे साथ ही साथ आपके देश के विकास के लिए काम हो रहा है।
क्योंकि हर सुविधा जो हमने सरकार ने उपलब्ध कराई है हमारे फायदे के लिए है। गांव में सबसे ज़्यादा मिसयूज होता है आरटीआई का। शहर का आदमी शायद आरटीआई न जानता हो, लेकिन गांव में एक आरटीआई की एप्लीकेशन हमेशा पड़ी रहती है। उसमें क्या होता है, हम अधिकारियों का आधा ज़्यादा समय जांच में आरटीआई में ही व्यतीत हो जाता है, तो इधर से हम कुछ कंस्ट्रक्टिव काम नहीं सोच पाते हैं।
ये बात सही सर, ये बहुत जानने वाली भी बात है कि लोग अपने स्तर तक जाने कि क्यों ऐसा करना गलत है। हाँ, कोई राइट की बात हो जहाँ उनका हनन हो रहा हो बिल्कुल कहना चाहिए, लेकिन जहाँ विकास की बात हो रही हो तो वहाँ पे एक रोक बांध वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए।
इतनी कंप्लेंटें आती हैं, हमारे ब्लॉक लेवल पे देखते हैं हमारे विभाग के जीज हैं वो आधा समय उनका केवल जांच में ही बीत जाता है।
जी जी। और जांच के दौरान कार्य करना तो बिल्कुल मुश्किल होगा। चलिए, थैंक यू सर, और इस बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ज्ञानस्थली 89.6 FM, 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
मैं पढ़कर अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ, मैं भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ।
सारे सपने होते हैं साकार, क्वालिटी एजुकेशन के साथ सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज, जहां एजुकेशन के साथ स्टूडेंट्स के कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम किया जाता है, जहां है वेल इक्विप्ड लैब्स, प्रॉपर लाइब्रेरी और ग्रीन कैंपस। साथ ही साथ आपको मिलता है वोकेशनल कोर्सेज में योगा, कंप्यूटर, म्यूजिक, ब्यूटिशियन, स्टिचिंग, टेलरिंग और रेडियो जॉकी, जो आपके बच्चे को देता है एक नई उड़ान। साथ ही साथ NSS, स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज की रेगुलर क्लासेस। गोंडा जनपद का पहला गर्ल्स कॉलेज सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9450 75 74 83, 9450 75 74 83।
ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
जब देखेंगे खुली आंखों से सपने तो पूरे होंगे हर लक्ष्य अपने, और इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करता है एम्स इंटर कॉलेज। डॉक्टर अभय श्रीवास्तव की एबर्ट गाइडेंस में होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। प्ले ग्रुप से क्लास 12th CBSE पैटर्न,
जहां आपको मिलता है स्पोर्ट्स एंड इंडोर शूटिंग, स्कॉलरशिप टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, स्पेशल क्लासेस ऑन मोरल वैल्यूज एंड स्किल्स, स्मार्ट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, वाईफाई कैंपस, RFID फैसिलिटी और फ्री एजुकेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एम्स इंटर कॉलेज हेल्प्स योर चिल्ड्रन टू फ्लाई विद कलर्स। पता है नियर बरगांव पुलिस चौकी, अकेलवा आवास विकास कॉलोनी, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 876-553-8209 और 988-954-3258 aimscollegegonda@gmail.com।
ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
We'll be right back.
ज्ञान स्थली 89.6 FM, 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
सो वेलकम अगेन लिसनर्स, हम लोग फिर जुड़ चुके हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम गौधोली में और आज हम बात कर रहे हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी से, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी जानकारी और अपने क्षेत्र में बहुत कुछ सर ने किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है कि हमारे गोंडा क्षेत्र में ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव किया और ऐसे मतलब कहते हैं ना कि डाउन टू अर्थ, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। आज आप सबके सब उनके बारे में कुछ खास जानेंगे और कुछ नया जानेंगे और वो भी जानेंगे कि क्या क्या उनसे सीख सकते हैं। तो अब बात करते हैं सर कि क्या आप हमारे यूथ को, हमारी जो लिसनर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या वो इस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं या उनकी लाइफ में अगर कोई ऐसी दुविधा है कि कह सकते हैं ना कि आगे एम को लेके जब दुविधा होती है तो उस क्षेत्र में भी ये जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो पोस्ट है वो उनको कैसे मदद कर सकता है सर?
पहली बात, हम गोंडा के, गोंडा हमारे लिए इसमें गर्व का विषय है कि यहाँ पे लोक सेवा आयोग से दो कैंडिडेट, संघ लोक सेवा आयोग से भी दो कैंडिडेट, काफ़ी ज़्यादा संख्या में इस बार नीट की परीक्षा अच्छे रैंक्स में उत्तीर्ण किए हुए हैं। ऐसी उपलब्धि गोंडा को बहुत दिन बाद मिली हुई है
जी सर,
ये इस वर्ष की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक अच्छा संकेत है कि हम लोग में कुछ सुधार या परिवर्तन आना शुरू हो गया है।
और सर हार्ड वर्किंग हो चुके हैं
क्योंकि यहाँ पे लोगों ने रिजल्ट देना शुरू कर दिया है युवाओं के लिए। हाँ, आजकल का कंपटीशन का ज़माना है लेकिन कंपटीशन अच्छे में है
जी सर।
अगर किसी भी एग्जाम में 10,000 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, कैंडिडेट बैठ रहे हैं, तो 10,000 में से केवल सीरियस 200 हैं
जी,
बाकी लोग वैसे ही बैठे हुए हैं। तो हम युवाओं से ये कहना चाहते हैं, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं या इंजीनियरिंग की अच्छी तैयारी करनी है कि सब कुछ करना, तो उनको शुरू से ही अलर्ट रहना पड़ेगा, हमेशा विजिलेंट रहना पड़ेगा, आसपास की घटनाओं के बारे में उन्हें हमेशा जानकारी होनी चाहिए। अपने जो है पढ़ाई है इसके अलावा भी उनको जनरल स्टडी की तरफ बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए
जी सर,
चाहे वो जिस सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो तब भी उनको जो है हिस्ट्री इकोनॉमिक्स वगैरह की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आसपास के जो करंट अफेयर्स हैं इनकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना अब कंपटीशन निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। इंजीनियरिंग में भी लोक सेवा आयोग से जब भी सहायक अभियंताओं की भर्ती निकलती है या अवर अभियंताओं की भर्ती निकलती है तो उसमें पहले तो एक हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है, एक जनरल स्टडी का पेपर होता है, इंजीनियरिंग वगैरह का पेपर तो बाद में होता है इसको क्वालिफाई करने के बाद
जी जी सर। तो अपडेटेड होना उनके लिए बहुत,
अपडेटेड होना, केवल हम कहें कि हमने कोर्स पूरा कर लिया है तब तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कोर्स पूरा करना ही नहीं महत्वपूर्ण है, हमें साइड में भी काफ़ी स्टडी करनी चाहिए,
डायनेमिक नॉलेज
होनी चाहिए, क्योंकि अब इसके बिना नहीं काम चल सकता है।
और सर कैसे मतलब शुरू से वो क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं, मतलब अगर
आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के लिए उसके पास दो तरीके हैं, या तो डिप्लोमा कर ले, आजकल डिप्लोमा का रिवाज लगभग समाप्त हो चुका है क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज पर्याप्त हो चुके हैं
जी,
वहाँ से वो बीटेक की ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहे तो प्राइवेट सेक्टर में जा सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में स्कोप थोड़ा सा केवल सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की ही होती है
जी सर,
राज्य सरकारों के पास कोई फैक्ट्री नहीं है इस समय
जी सर, तो इस वजह से वो लोग प्राइवेट में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज गेन कर सकते हैं,
प्राइवेट में काफ़ी अपॉर्चुनिटी।
और सर अगर हम बात करें कि जो यूथ है हमारा, यूथ मतलब टीनेजर्स जो हैं, टीनेजर्स की लाइफ में मतलब इमोशनली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाते, इधर उधर माइग्रेट करते रहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो अपने माइंड को थोड़ा सा एक डायरेक्शन में कंट्रोल करें और अपनी स्टडीज़ को या डायनेमिक नॉलेज जो है उसको कैसे मेंटेन करें, उनका डेली शेड्यूल कैसा हो सकता है सर?
उनको घर का एटमॉस्फेयर भी हमें देना पड़ेगा, परिवेश बनाना बहुत ज़रूरी है। आजकल कोई भी स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता है, पढ़ने का मतलब हमारी उसकी बुक से नहीं है, उसको पढ़ने की आदत ही नहीं होती है, ना वो कोई मैगजीन पढ़ता है ना पेपर पढ़ता है, या तो सोशल मीडिया पे ही लगा रहता है, स्कूल का सिलेबस किसी तरीके से वो पूरा करता है, 90% नंबर पा जाता है। स्ट्रेटजी से नंबर प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपको तीन क्वेश्चन भी आपको दे दें और फिर हम तीन क्वेश्चन 10 मिनट बाद पूछ लें, आप 100% जवाब दे देंगे, आपके नंबर आ गए 100। तो क्या इससे आपका पूरा टेस्ट हो गया? नहीं हो गया।
नहीं,
हमारे पेरेंट्स भी बहुत इस पे खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे ने 95% नंबर गेन किया, 80% नंबर गेन किया। नॉलेज के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, वो एक भ्रम में जी रहे होते हैं, वो बच्चा भी भ्रम में जी रहा होता है।
हाँ सर, एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि नॉलेज का एप्लीकेशन उन्हें नहीं मालूम है।
नहीं मालूम।
अगर नॉलेज अप्लाई करना उनको आ गया तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कुछ प्रतिशत कर लिया, और इसके अलावा नॉलेज अप्लाई करने के बाद उसे रिजल्ट को भी ऑब्जर्व करना आ गया तो दैट विल बी द 100%। और क्या कुछ नया करने के बारे में सोचा जा सकता है सर इस फील्ड में, कि कोई नई सोच इसमें ऐड हो सकती है?
इस फील्ड में जिस तरीके से आजकल नंबर बढ़ रहा है उससे अच्छा है कि एग्ज़ाम सिस्टम ही ख़त्म कर देना चाहिए। जो बच्चा एग्ज़ाम देना चाहे वही एग्ज़ाम दे, जिसको अपना वैल्यूएशन कराना है वो एग्ज़ाम दे दे, बाकी सबको क्लासेस दिया जाए। इस तरीके से नंबर देने पे जो सीरियस स्टूडेंट होंगे वो पढ़ेगा, बाकी को डिग्री मिल जाएगी।
जी जी, और अपने क्षेत्र में वो
अच्छा कर पाएगा।
थैंक यू। और सर क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, कैसे वो मोटिवेट हो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के क्षेत्र में या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कैसे वो मोटिवेटेड हो? और हमारी जो फीमेल्स हैं, यानी कि हमारी जो महिला प्रधान क्षेत्र है, वो काफ़ी डरते हैं इंजीनियरिंग के, मतलब कुछ लोग तो बहुत मोटिवेटेड होती हैं बचपन से ही, लेकिन कुछ लोग डरती हैं कि नहीं ये काम नहीं सही है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होते हैं, यहाँ जाना पड़ेगा वहाँ जाना पड़ेगा, मेरा मैथ्स नहीं अच्छा है, मेरा फिज़िक्स नहीं अच्छा है, मैं फिज़िक्स नहीं कर पाऊँगी। तो उसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे?
जब पहले से ही आदमी हार मान जाएगा तो उसको तो असफलता ही मिलेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता।
बिल्कुल सर।
और क्यूरियोसिटी से बड़ा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है।
यस, ये बात 100% ट्रुथ है, क्योंकि ऐसे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जो रद्दी का काम करते थे, और उन्होंने रद्दी में बैक्टीरिया की खोज कर निकाली, रद्दी में भरे पानी को उनमें मूवमेंट देखा और उसमें बैक्टीरिया की खोज निकाली। और क्यूरियोसिटी सबसे बड़ी साइंटिस्ट है, सबसे बड़ा ज्ञान क्यूरियोसिटी है। तो सर यूथ को मैसेज क्या देना चाहेंगे?
ऐसा क्यूरियस रहे,
क्यूरियस रहे
हमारे आसपास क्या हो रहा है। अगर हमारे पास एक भी चीज़ आ जाती है वो हमें उससे 100 क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस ग्लास में पानी है तो पानी कितना आधा है, आधा है तो पानी कैसे बना हुआ है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, तो फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या, मतलब इससे प्रश्नों की झड़ी उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती। एक ग्लास सामने रखा हुआ इससे 10,000 क्वेश्चन बन जाएंगे उसके दिमाग में।
तो सर आजकल का जो लर्निंग सिस्टम है उसमें कोई चेंज लाने की जरूरत है?
बस यही क्यूरियोसिटी बढ़ाए, क्यूरियोसिटी ही डेवलप है। आजकल सब कुछ प्रैक्टिकल कर देना चाहिए, जो जिसके अंदर क्यूरियोसिटी है उसकी क्यूरियोसिटी पूरी की जानी चाहिए, जिसके अंदर नहीं है उसको केवल सर्टिफिकेट दे के अलग कर देना चाहिए।
सर ये बात बिल्कुल सही कही कि जिसको जैसी इच्छा है उसे वैसे पढ़ाया जाए, लेकिन क्यूरियोसिटी के लिए सर कोई ऐसी चीज़ है कि हाँ बीइंग अ टीचर या बीइंग अ फैमिली, मतलब फैमिली की बात सबसे पहला योगदान मुझे लगता है सर फैमिली का होता है।
हाँ,
तो फैमिली क्या कर सकती है कि जिससे बच्चा क्यूरियस हो या क्यूरियोसिटी जागे हमारे घर के अंदर?
देखिए हर बच्चा जब छोटा होता है, पैदा होता है, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती ही है, वो हर चीज़ को देख के सुन के समझना चाहता है। हम लोग अवॉइड करने लगते हैं धीरे धीरे, जब बड़ा होने लगता है 5-6 साल का बच्चा होता है तो हमारा फोकस ये हो जाता है कि वो स्कूल के डिसिप्लिन में रहे
जी।
उसको जितना स्कूल में पढ़ाया गया है वही पढ़े, क्योंकि उसको नंबर लाना है, उसको अपने टीचर का अप्रिसिएशन सुनना है। हमें इस चीज़ से हमारा टीचर अप्रिसिएट करे या न करे, हमारा बच्चा कोई चीज़ जानना चाहता है तो हमें उसको
बताना
चाहिए
और उसको एक्सप्लोर करने के हर मौके देने,
हमें खुद देना चाहिए उतना बड़ा नहीं, उसकी जो भी क्यूरियोसिटी उसको हमें ख़त्म करना चाहिए, बताना चाहिए।
और ये सब चीज़ें हम सब महसूस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर पेरेंट इसे इग्नोर करता है।
नहीं, इग्नोर इसलिए करता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हमारी टीचर क्या कहेंगे। हमें टीचर से कोई लेना देना नहीं होता है, बच्चा हमारा है। एक घटना हम आप
जी,
मेरी बेटी थी फातिमा में ही पढ़ रही थी, पेरेंट टीचर्स मीटिंग हुई, हम भी गए, इनकी फिजिक्स की टीचर ने कहा है ये बहुत अच्छा कर रही है आपकी बेटी है। हमने कहा आपके हिसाब से अच्छा कर रही है, हमें तो नहीं अच्छा लग रहा है, इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। तो बजाय हम अप्रिसिएशन सुनने के, उस समय हम खुश हो गए थे, बहुत अच्छा है टीचर ने बताया इतने परसेंट मार्क आए, तो उस दिन उसका ग्रोथ रुक गया होता।
ये बहुत बड़ी सर मैसेज आपने दिया हमारे यूथ को, हमारे लिसनर्स को, कि क्यूरियोसिटी ही सबसे बड़ी, मतलब कह सकते हैं कि एक ग्रोथ को जन्म देने वाली है, और एप्रिसिएशन लेने के बाद वहीं पे फुल स्टॉप लगाना भी गलत है।
अभी आप हमें एक कक्षा 8 का स्टूडेंट आप हमें दे दें, उससे हम इंटर का क्वेश्चन करवा देंगे आपके सामने बैठ के, जो कुछ पढ़ रहा है उसको हम बहुत बेसिक से उसको छोटे छोटे पीसेस में करके, अभी आपसे कह दिए कि 100 किलो गेहूं उठाना नहीं उठा पाएंगे, और हमने कह दिया आधा आधा किलो गेहूं 200 बार में उठा दो।
सर वाह, बहुत अच्छा मैसेज, और बहुत अच्छे तरीके से सर आपने ज्ञान और क्यूरियोसिटी को रिलेट करके बताया कि नॉलेज लर्न करना मात्र नहीं है, उसको ऑप्ट करके मार्क्स लाना मात्र नहीं है, बस उसको एंडलेस एरियाज तक पहुंचाना है। नॉलेज को कभी भी एक जगह रुकना नहीं चाहिए। और सर मेरा ये मानना है कि किसी भी एज में हम लर्निंग कर सकते हैं, लर्निंग की कोई एज नहीं होती, कभी भी शुरू किया जा सकता है, सीखना सिखाना कभी भी रुकना नहीं चाहिए।
कभी भी लर्निंग की कोई एज नहीं होती है, आज भी हम पढ़ते रहते हैं, यहाँ तक कि इंटर और बेसिक के क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करने को मिल जाता है तो हम करते हैं, हमें बड़ा शौक है, हम इंटरनेट से डाउनलोड करके क्वेश्चंस उतारते हैं और आज भी सॉल्व करते हैं, जिसका कोई यूज नहीं है।
और सर ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि बहुत सारे लिसनर्स ऐसे हैं, शायद वो रिटायर्ड भी हो चुके होंगे और वहाँ बस रिटायरमेंट का अपने एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी पेंशन एंजॉय करने होंगे, लेकिन आपने बताया कि आप अभी भी क्यूरियस हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, लर्निंग के। आपने कहा कि मैं किसी भी बच्चे को भी बता सकता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है सर, थैंक यू सो मच। और कोई मैसेज अगर आप देना चाहते हैं लास्ट में तो बिल्कुल दे सकते हैं, हमारे यूथ के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए, हर एज के लिए सर, अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए।
हम यूथ से यही कहना चाहेंगे कि शॉर्टकट लाइफ में कोई होता नहीं है, उसके लिए कठिन परिश्रम करें
जी।
परिवेश आपको मिल ही रहा है, आप मुन्ना का परिवेश धीरे धीरे सुधर रहा है
जी।
पर 1-2% काउंट करता है, उसके सहारे हम रुक नहीं सकते हैं। एक बार चाणक्य से किसी ने कहा कि जब भाग्य जो भाग में होगा होगा ही होगा, तो तब चाणक्य ने कहा कि हो सकता है आपके भाग में लिखा हो कि ये कर्म करने के बाद ही आपको रिजल्ट मिले, हो सकता है हमारे भाग में ही लिखा हो कि मेहनत करना पड़ेगा।
ये बहुत बड़ी मैसेज दिया आपने, और थैंक यू सो मच। और लिसनर्स, मैं सब सच में ये कहना चाहूँगी, हमारी गोंडा की भूमि बहुत ज़्यादा लकी है, बहुत ज़्यादा गर्व से भरी हुई है, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे पर्सनैलिटी लोग हैं जिन्होंने इतना अच्छा अच्छा अनुभव दिया, और आज भी वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सर ये हमारे गोंडा स्टेशन का ये पहला FM बैंड है, और यहाँ से हम कुछ ना कुछ अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं, और क्या लगता है सर ये कैसी पहल है गोंडा शहर की?
ये बहुत ही अच्छी पहल है गोंडा के निवासियों के लिए, एक अच्छा सराहनीय कदम है
जी। थैंक यू सर, और इसके लिए कुछ खास कहना चाहेंगे कि ये गोंडा को क्या फैसिलिटी दे रहा है, क्या गोंडा के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं?
हाँ, लाभान्वित हो रहे हैं।
चलिए धन्यवाद।
ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
वाओ, 3D बबल्स वाली टाइल्स, अरे यही तो चाहिए थी मुझे अपने बाथरूम के लिए।
जी हाँ, अब आपको मिलेगी आपकी मनपसंद प्रीमियम क्वालिटी टाइल्स, वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, किचन टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, हर डिजाइन और हर साइज की टाइल्स अवेलेबल हैं। अब सपनों का आशियाना बनाना हो गया है आसान, अब टाइल्स एंड मार्बल के साथ। एड्रेस नियर गौसिया मस्जिद, सर्कुलर रोड, गोंडा। फोन नंबर है 9170-298-770 और 63-94-699-209।
ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
मैं डॉक्टर रेखा शर्मा, जिला समन्वयक, जिला विज्ञान क्लब, अपने गोंडा जनपद वासियों से कहना चाहती हूँ, आज का युग पूर्णतः विज्ञान का युग है, इसलिए वैज्ञानिक चिंतन अपनाइए, अपने जीवन को सुखी बनाइए। आज विज्ञान केवल विज्ञान के विद्यार्थियों और शिक्षकों तक ही सीमित नहीं है, विज्ञान घर घर में पहुंच चुका है, मोबाइल रूपी विज्ञान हर व्यक्ति के हाथ में है, इसलिए वैज्ञानिक चिंतन बहुत जरूरी है, क्योंकि विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग और दुरुपयोग दोनों समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
जी नमस्कार, मैं प्रोफेसर शिव शरण शुक्ला, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन, श्री लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज गोंडा, कन्वीनर एजुकेशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, प्रबंधक अवध पब्लिक स्कूल, टैगोर नगर, जानकी नगर, गोंडा। हम यहाँ के नागरिकों को, अभिभावकों को एक संदेश देना चाहते हैं कि इस जीवन में शिक्षा से बड़ा धन कोई है नहीं। विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। हम अरबों खरबों रुपया रखे हों लेकिन अज्ञानता बस हम उस धन का सदुपयोग भी नहीं कर पाते, वो धन समाप्त हो जाता है। लेकिन विद्या का धन कभी समाप्त नहीं होता है। व्यय कृते वर्धति एव नित्यम, विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। हम इसको जितना ही दें, ज्ञान जितना ही इसका प्रचार प्रसार करें, उतना ही ये बढ़ता है। और अभिभावकों से ये अपील है कि आप बच्चों को बहुत संपन्न आर्थिक संपदा से संपन्न करने का प्रयास न करिए, उनको ज्ञान की संपदा दीजिए। उनको अगर ज्ञान और अनुभव से सुसज्जित कर देंगे तो उनको कभी जीवन में अर्थाभाव लगेगा ही नहीं। शिक्षा ही जीवन है, जीवन ही शिक्षा है, शिक्षा और जीवन दोनों एक ही है। इफ देर इज नो एजुकेशन देर इज नो लाइफ। इस तरह से आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए, उनके शिक्षा पर पूरा ध्यान दीजिए, आप अच्छी पेरेंटिंग करिए। और अध्यापक तो हमेशा बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए तत्पर है ही। बच्चों के भविष्य के निर्माण में या तो माता पिता या शिक्षण संस्थान के अध्यापक ये ज़्यादा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उनके व्यक्तित्व विकास में इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और अध्यापक तो समाज का निर्माता है और समाज का निर्माण अच्छे नागरिकों से ही होता है, खाली भीड़ से नहीं। शिक्षित लोग, अच्छे ज्ञानी लोग, अनुभवी लोग ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण।
ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
रोजवुड इंटर कॉलेज, द गेटवे ऑफ इनोवेशंस, ब्लेक ग्रुप से क्लास 12, CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम, क्लास 9 से 12, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, एडमिशंस ओपन।
सेलियन फीचर्स आर स्मार्ट क्लासेस एंड CCTV, GPS and transportation, computer and science labs, sports classes, dance classes, music classes, Zumba, Taekwondo and aerobics. Pata hai near Forest Office, Lucknow Road, Gonda. Sampark karein 8985880838 aur 8985880809.
Gyanasthali 89.6 FM, Gonda Sheher Ki Dhadkan.
Na 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 में देखो है मंजर सजे सारे हमी हम जहां में हर जगह सपने सजाने की हमको मिली वजह कहीं जैसे कोई बजे राहों में देखो है मंजर सजे सारे हमी सजाने की हमको मिली वजह ये अगर जो सच नहीं तो सच भला है क्या अपने हिसाब से दिल की किताब पे कुछ तो नया लिखो यारो अंजाम की फिक्र ना करती ये उम्र फिर क्यों भला डरो है जुनून
ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन
गोंडा शहर की धड़कन